तारी है, अब हम बकरा लाएंगे। फिर हसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर बकरे से खेलेगा और फिर ईद वाले दिन खुदा के लिए हम उसे कुर्बान कर देंगे।
बाबा इस बार हम बैल नहीं लाएंगे।
नहीं, इस दफा मैं सोच रहा हूँ कि बैल की बजाय बकरा लेकर आऊँ ताकि आप उसके साथ खेल सकें। बैल के साथ तो आप नहीं खेल सकते, उससे तो आपको डर लगता है।
अस्सलामुअलैकुम। कैसा है मेरा शहजादा?
बस ठीक हूँ।
हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं?
बाबा कह रहे थे कि इस बार मैं तुम्हारे लिए बकरा लेके आऊंगा।
वाह भाई, इस बार बकरा आ रहा है? बैल को क्या हुआ? आपका इतना बड़ा खानदान एक बकरे का गुजारा कैसे करेगा?
मैं सोच रहा हूँ इस दफा बकरा ले आऊं, कुछ और काम भी हैं अगर खुदा तौफीक दे तो, और कुर्बानी के लिए मेरे ख्याल में बकरा ही काफी है।
लगता है खर्चे बढ़ गए हैं भाई के। वैसे भी मेरे ख्याल में काफी दकनीसी काम हो गया ये, एक ही वक्त में गोश्त जानवर ना तो इतना बंदा खा सकता है ना ही संभाला जाता है, और फिर ऊपर से बीमारियां गंदगी जरासीम और ये सब कुछ, और फिर ऊपर खुदा ने तो खुद कहा है मुझे ये गोश्त और खून चाहिए भी नहीं।
भाई आपके ख्यालात को क्या हो गया है, क्या सोचना शुरू कर दिया है तुमने? ये त्यौहार और इस तरह की दूसरी रसूमात किसी भी मुआशरे की रूह और जान होते हैं कि जो बताते हैं कि मुआशरा किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये ईद तो वैसे भी इसार और कुर्बानी की ईद है। इस बात में कोई शक नहीं कि कुर्बानी में इंसान का जज्बा और उसका खलूस खुदा तक पहुंचता है, लेकिन मेरी जान इसी ईद पर बहुत सारे ऐसे लोगों को खाने के लिए गोश्त भी मिलता है जिनको शायद साल भर में ना मिलता हो।
भाई अल्लाह के बंदों की मदद तो किसी भी तरीके से की जा सकती है, ये सब कुछ तो पैसे और रिसोर्सेज का जिया है।
मेरे ख्याल में ये फकत तुम्हारा ख्याल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोगों की किसी और तरीके भी मदद की जा सकती है, लेकिन इस ईद पर कितने लोगों का रोजगार चमकता है, जानवर लाने वालों का, बेचने वालों का, कसाई का, उसे और यानी बहुत सारे लोगों को इससे फायदा पहुंचता है, ये अपनी जगह पे। और इसके अलावा मुआशरे में और लोगों में जो एक जज्बा पैदा होता है इसार और कुर्बानी का, वो उससे बालातर है, वो उससे बढ़कर है, उसका फायदा कुछ ज्यादा होता है। और फिर मुआशरती तौर पर देखो तो इस कुर्बानी के मौके पर घर के छोटे से बच्चे से लेकर घर के बुजुर्गों तक हर कोई इस काम में मसरूफ होता है।
हेलो, ओहो यार मैं बिल्कुल भूल गया था, मैं बस अभी अभी भाई से बात करता हूँ मैं। हाँ अभी करता हूँ, ठीक ओके। भाई यार इस फ्राइडे को घर तो दिलवा दें, वैसे मेरी जान ही छोड़ेगा।
किसको?
आपको बताया था मेरा दोस्त है दानियाल, उसने दूसरी शादी की। भाई मैंने कहा था उसको दूसरी शादी करे।
ओहो तुम कह रहे थे कि उसने कोई झूठ बोला है, दूसरी शादी करने में गलत क्या है, दूसरी शादी ही की है ना उसने।
अच्छा जो भी है मैं उसको घर ढूंढ दें और कोशिश की कहीं दूरी मिल जाए, मेरी जान भी छूट जाएगी। वाह भाई वाह, बस जितने दलाइल अब कुर्बानी के हक में दे रहे थे, मुझे लगा को बड़ा सा ऊँट लाएंगे और आया छोटा सा बकरा।
दलाइल तो मैं दूसरी शादी के हक में भी बहुत ज्यादा देता हूँ।
कुर्बानी के बीच में शादी की बात कहाँ से आ गई?
शादी भी तो कुर्बानी होती है, पहली हो या दूसरी।
अरे भाई मैं मर का आता हूँ।
अरे नहीं भाई, ये तो रोज का मामूल है। तुम बताओ, लगता है पैसे चाहिए मेरे लैंडलॉर्ड भाई को।
पैसे तो खैर चाहिए, भाई पे तो लगता है गुर्बत छाई हुई है।
अरे खुदा ना करे, खुदा का दिया सब कुछ है और खुदाई ने हमेशा सलामत रखे, कभी तंगी नहीं होने दी इन्होंने।
जी अब तक तो ऐसे ही था, लेकिन अब लगता है भाई के खर्चे बढ़ गए हैं, बैल की जगह बकरा आ गया है और मेरा जेब खर्च भी।
ओहो तो तुम्हारे जेब खर्च का मसला है, तो ये लो कुछ पैसे और उल्टी सीधी बातें मत करो प्लीज।
चले आप भी दे दें, वैसे भाई ने भी कुछ पैसे दिए थे मुझे। अलबत्ता मैं ये बताने आया था कि जैसे हम बकरा लेते हैं, उसने बताया कि भाई ने दो बकरे लिए हैं इस दफा।
شکر ہے یہ بھی اچھے سے ہو گیا، کاش اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا۔ اچھا مجھے کہیں جانا ہے ایک ضروری کام سے، میں پھر ہو کر آتا ہوں۔ رافیہ کہاں گم ہیں آپ؟
کچھ نہیں، کیا آپ واقعی دوسری شادی کے حامی ہیں؟
ہیں؟ میں قربانی کی بات کر رہا ہوں اور آپ دوسری شادی کی؟
پتہ ہے، میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں۔
آپ کے دل میں چل کیا رہا ہے آپ یہ بتائیں۔
کافی عرصے سے آپ کچھ عجیب ہو گئے ہیں، گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں اور آپ کے بھی۔ احمد بتا رہا تھا آپ نے 2 بکرے لیے ہیں، اور آج عید کا دن ہے، کھانے کا وقت ہے اور آپ کو باہر جانا ہے، پوچھ سکتی ہوں کیوں؟
ارے بیگم صاحبہ، آج شیطان کو کنکریاں مارنے کا دن ہے، شیطان کو دل میں جگہ دینے کا نہیں۔ آپ ذرا تیار ہو جائیں، میرے ساتھ چلیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔
مجھے نہیں جانا کہیں۔
آپ چادر صحیح کریں، آپ ساتھ چلیں، آپ کو کچھ دکھاتے بھی ہیں اور ساتھ کسی سے ملواتے بھی ہیں۔
چلیں۔
بن بلائے مہمان نہیں چاہیے۔
آئیے آئیے سعید میاں،
مہمان خدا کی رحمت، اور آپ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ آنے میں ذرا سی دیر کر دی، بچے خالہ کے ہاں چلے گئے۔
چلیں، ہماری قسمت بہل معاملات سے فارغ ہوتے ہوتے یہ وقت ہو گیا۔ خالہ یہ میری اہلیہ رافیہ ہیں، اور آپ کو ان سے ملوانا چاہ رہا تھا، اور ان کو جو ہے آپ سے ملوانا چاہ رہا تھا۔
جیتی رہو بیٹی، خوش رہو۔
رافیہ یہ ڈاکٹر مجتبیٰ کا گھر ہے، شہید ڈاکٹر مجتبیٰ کا گھر ہے، خالہ کی اکلوتی اولاد، جن کو انہوں نے خدا کے راہ میں قربان کر دیا۔ ہم جیسے 1000 بکرے بھی قربان کر لیں تو وہ ان کی قربانی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
سعید میاں، تم تو دنیا میں جنت کما رہے ہو، جب تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، تم دونوں کو دیکھ کر مجھے اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں۔
خالہ کسائی نہیں آیا؟
نہیں، اب تک تو نہیں آیا۔ ہاشم اس وعدے پہ گیا ہے کہ بکرا اس کے آنے پر ذبح کیا جائے۔ اچھا ہے، دوبارہ دیکھ لے گا تبھی کسائی آئے۔
مجھ سے بھی یہی کہہ رہا تھا، کہ شام کا کہہ رہا تھا۔ چلیں، برحال اس دن جب میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی بات کرنا چاہ رہی۔
مت پوچھو بیٹا، جس روز تم بکرا دے کر گئے ہمارے دل سے کیا کیا دعائیں نکلے۔ جس روز بکرا آیا اس روز صبح نماز کے وقت ہاشم کی آنکھ کھل گئی، وہ بھاگتا ہوا سہن میں گیا۔ میں بھی یہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے اٹھ کر دیکھا سہن میں، وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ بیٹا وہ تو میرا اپنا خون تھا، وہاں پر اگر اس کا باپ کا قاتل بھی ہوتا تو وہ بھی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کر روتا۔ بس وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے اور ماں اور باپ کو دیکھا۔ میرا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ عید نہیں کر سکتا، لیکن یہ تمہارے لیے میں بکرا لایا ہوں، اس کے ہاتھ میں رسی تھی، तुम इसकी कुर्बानी कर देना, तुम इसकी कुर्बानी कर देना।
मैंने अभी तक राफिया को डॉक्टर मुज्तबा के हवाले से कुछ भी नहीं बताया, अगर आप कुछ बता दें तो।
हाँ बेटी, मुझे आज भी लगता है कि मेरे बच्चे यहीं कहीं हैं, मेरे आसपास। जब मुज्तबा 5 साल का था तो वो यतीम हो गया। बेटी तुम्हें पता है एक जवान बेवा का बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। मैंने सिलाई कढ़ाई करके, लोगों के घरों के काम काज करके मैंने उसे स्कूल में मैट्रिक करवाया। मैट्रिक के बाद उसने मुझसे पैसे लेने छोड़ दिए और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। रात गए वो अपनी तालीम जारी रखता था। उसके बाद उसने सेकंड ईयर में दाखिला लिया। फिर सेकंड ईयर में उसने मुझे कुछ हर महीने पैसे भी देने शुरू किए। मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला तो मेरे कुछ जमा किए हुए पैसे मैंने उसको दिए। उसके बाद उसने मुझसे कभी पैसे नहीं लिए। कोई मां जाने ना जाने, लेकिन मैं जरूर जानती कि एक बेटा कैसे जवान होता है। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। हमारे हालात भी बदल गए। फिर मेरे बेटे ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, कोई काम नहीं करने दिया। फिर मैंने भी ऐड किया कि मैं अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जैसे मैंने अपने बेटे को पाला, ऐसे ही इन दोनों की परवरिश करूंगी।
आपको खुद शहीद मुज्तबा ने कैसे भेजा?
मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर मुज्तबा, वो इंग्लैंड जाने लगे तो उन्होंने मुझसे तذکرہ किया और फिर मुझे इस फैमिली से मिलाया। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था डॉक्टर शहीद डॉक्टर मुज्तबा का, तो उसके बाद से फिर इस फैमिली के साथ जो है मेरा रिश्ता है और ताल्लुक भी है।
सईद, खुदा का शुक्र है कि आप मेरे शौहर हैं। हैफ है उन लोगों पर जो अपनी जिंदगियों में इतना मगन हो जाते हैं कि आसपास का होश ही नहीं होता। ये बच्चे शुहदा की अमानतें हैं हमारे पास, बल्कि सईद और शुहदा तक पहुंचने का रास्ता है। मुझे अभी तक एहसास ही नहीं था, काश मैं बच्चों से मिल पाती।
इंसान वो एक शहीद का घर था और आज मुझे अपने शोहर पर फख्र है। इतना फख्र कि इतना पहले कभी नहीं हुआ। सईद ने उनकी मदद की थी और अगर वो उनकी मदद ना करते तो आज मेरा सर शर्मिंदगी से झुका हुआ होता। उस बूढ़ी माँ के आगे
जो मुझे मेरी बेटी कहकर पुकार रही।